अध्याय 15 वर्धन वंश। श्रीकंठ बाण अपने हर्षरित में श्रीकंठ नामक जनपद का वर्णन करता है। इसमें आधुनिक दिल्ली और हरियाणा प्रदेश सम्मिलित थे। यह जनपद बड़ा सुखी और समृद्ध था, परंतु वेनसांग यहाँ के निवासियों की निंदा करता है। उसके कथनानुसार वे अंधविश्वासी, संकीर्ण बुद्धि और अनुदार थे। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीकंठ जनपद में बौद्धेतर निवासी बहुसंख्यक थे। इस निवासियों के श्रमिक विश्वासों को ही वेनसांग ने अंधविश्वास, संकीर्णता और अनुदारता कहा है। थानेश्वर, इसी श्रीकंठ जनपद में थानेश्वर एक अंतर्मुखी था। इसका समीकरण हरियाणा में स्थित थानेश्वर नगर के चतुर्दिक प्रदेश से किया जाता है। इसी प्रदेश में वर्धन वंश का उदय हुआ। हर्षरित से प्रकट होता है कि इस वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। यह शैव धर्मावलंबी था। वर्धन वंश के अभिलेखों में पुष्पभूति का नाम नहीं मिलता। उनमें जो वंशावली मिलती है वह इस प्रकार है। पहला नरवर्धन, दूसरा राज्यवर्धन, तीसरा आदित्यवर्धन, चौथा प्रभाकर वर्धन। इनमें प्रथम तीन राजा महाराज कहे गए हैं। इससे प्रकट होता है कि ये गुप्त अथवा हुड़ो अथवा कभी गुप्तों और कभी हुड़ो के अधीन थे। आदित्यवर्धन की पत्नी महासेन गुप्ता संभवतः उत्तरकालीन गुप्त वंश के राजा महासेन गुप्त की बहन थी। इससे प्रतीत होता है कि वर्धनों और उत्तरकालीन गुप्तों के संबंध महत्वपूर्ण थे। प्रथम तीन राजाओं को 500 ईस्वी और 580 ईस्वी के बीच रखा जा सकता है। जाति वर्धन वंश वैश्य जाति था। वेनसांग ने इसे फिशो कहा है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प भी इसे वैश्य बताता है। प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश में सर्वप्रथम इसी राजा को महाराजाधिराज की उपाधि से पुकारा गया है। हर्षरित इसे प्रतापशील भी कहता है। भिठौरा मुद्रा भांड में प्रतापशील की मुद्राएं भी मिली हैं। हर्षरित प्रभाकर वर्धन का वर्णन इस प्रकार करता है। हुड़ हरे केशरी व हुड़ रूपी हिरणों के लिए सिंह के समान था। सिंधु राज ज्वरा सिंधु नरेश के लिए ज्वर के समान था। गुर्जर प्रजागर गुर्जरों की निद्रा को हरने वाला था। गांधराधीप गंध द्वीप द्वीप कूट पा कलह गंधा नरेश रूपी हाथी के लिए एक भयंकर महामारी के समान था। लाटपाट व पाटचरह लाटो की कुशलता को लूटने वाला। मालव लक्ष्मी लता परशु मालवों की लक्ष्मी रूपी लता के लिए परशु के समान। शिवी वैद्य और राधा कुमार मुखर्जी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि प्रभाकर वर्धन ने पश्चिमी पंजाब, सिंध, राजस्थान का भाग, गांधार, लाट और मालवा पर अधिकार कर लिया था। परंतु बाण का वर्णन काव्यात्मक है, इसे अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता। इनमें से सिंध, गंधार, लाट जैसे प्रदेशों पर तो उसके अधिक प्रतापी पुत्र हर्ष का भी राज्य न था। हाँ, यह संभव है कि प्रभाकर वर्धन की इन सभी राज्यों से शत्रुता हो। हुड़ आक्रमण, ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु नदी के पश्चिम में जाबुल में हुड़ राज्य था, जो अब भी भारत पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था। हुड़ और प्रभाकर वर्धन के बीच कभी युद्ध हुआ होगा, कम से कम दोनों में शत्रुता अवश्य थी। इसी से हर्षरित में प्रभाकर वर्धन को हुड़ हरि केसरी कहा गया है। हर्षरित से ज्ञात होता है कि हुड़ों ने लगभग 604 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। प्रभाकर वर्धन ने उनका दमन करने के लिए अपने पुत्र पुत्रों बड़े पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। राज्यवर्धन और हुड़ों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इसमें राज्यवर्धन के शरीर पर बाणों के अनेक घाव लगे। अभी युद्ध चल ही रहा था कि थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण राज्यवर्धन को राजधानी वापस आना पड़ा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, उत्तराधिकारी का प्रश्न। हर्षरित का कथन है कि हुड़ों का सामना करने के लिए राज्यवर्धन आगे निकल गए थे और हर्षवर्धन आखेट करते हुए पीछे रह गए थे। इसलिए प्रभाकर वर्धन की गंभीर बीमारी का समाचार पहले हर्ष को मिला। हर्ष तत्काल राजधानी वापस आ गए। प्रभाकर वर्धन की दशा बिगड़ती गई और उनके बचने की कोई आशा न रही। यह देखकर प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती सती हो गई। अभी तक राजवर्धन राजधानी वापस नहीं आ पाए थे। अतः रोग सैया पर पड़े हुए प्रभाकर वर्धन ने छोटे राजकुमार हर्ष को बुलाकर इस प्रकार कहा। यह पृथ्वी तुम्हारी है, राजकोष अपने हाथ में करो, राजसमूह को अपनाओ, राजभार संभाल, शत्रुओं का दमन करो। डॉक्टर स्मित और डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रभाकर वर्धन अपने छोटे पुत्र हर्ष को राजा बनाना चाहते थे। इसी से उन्होंने मरते समय उसे इस प्रकार की सलाह दी। परंतु यह मत असंगत है। प्रभाकर वर्धन ने यह सलाह हर्ष को इसलिए दी कि उस समय तक राजवर्धन राजधानी में वापस नहीं आ पाए थे। वस्तुतः प्रभाकर वर्धन का कथन दोनों भाइयों के लिए था। इस मत की पुष्टि हर्षचरित के अंतः साक्ष्य से भी होती है। जिस समय हर्ष को यह ज्ञात हुआ कि राज्यवर्धन संन्यास लेना चाहते हैं और राज्य का भार उन पर डालना चाहते हैं, तो उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में इस प्रस्ताव का विरोध किया। मुझसे राज्य करने के लिए कहना वैसा ही है जैसा कि छोत्री को मदिरा पान करने सद्भिर्त को अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करने, सज्जन को अधम के साथ आचार विचार करने अथवा सती को अपना सतीत्व त्यागने के लिए कहना। दो परस्पर विरोधी शिविर हर्षरित से दो बातें प्रकट होती हैं। पहला, उत्तरकालीन गुप्त वंशी महासेन गुप्त मालव राज कहा गया है, उसके पुत्र माधव गुप्त और कुमार गुप्त थानेश्वर की राज्यसभा में रहते थे। दूसरा, प्रभाकर वर्धन को मालव लक्ष्मी लता परुसा कहा गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह मालव राज का शत्रु था। इन परस्पर विरोधी बातों का समाधान इस प्रकार हो सकता है, दामोदर गुप्त की पराजय के पश्चात मगध राज्य पर मोखरी वंश का अधिकार हो गया, अतः दामोदर गुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी महासेन गुप्त मगध छोड़कर मालवा में आ गया और वहाँ उसने नवीन राज्य की स्थापना की। महासेन गुप्त की बहन महासेन गुप्ता थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की माता थी, अतः महासेन गुप्त के दोनों पुत्रों का थानेश्वर में रहना आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मालवा में महासेन गुप्त का अधिकार अधिक समय तक नहीं रहा। वहाँ देवगुप्त नामक एक अन्य नरेश का उदय हुआ। इसका नाम बासखेड़ा ताम्रपत्र में मिलता है। यह भी उत्तरकालीन गुप्त वंश का राजकुमार प्रतीत होता है। इसने संभवतः महासेन गुप्त से मालवा छीन लिया। प्रभाकर वर्धन ने महासेन गुप्त और उसके पुत्रों का पक्ष लिया होगा, इसी से वह मालवा का शत्रु माना गया है। इस स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि मालवा नरेश देवगुप्त वर्धन वंश का शत्रु था। वर्धन वंश की राजकन्या राजश्री कान्यकुब्ज के मोखरी नरेश ग्रहवर्मा की रानी थी, अतः देवगुप्त मोखरी वंश का भी शत्रु था। इस शत्रुता में देवगुप्त अकेला न था, उसके साथ गौड़ नरेश शशांक था। डॉक्टर राखल दास बनर्जी का मत था कि शशांक उत्तरकालीन गुप्त वंशी था। यदि यह सत्य है तो दोनों उत्तरकालीन गुप्त नरेशों देवगुप्त और शशांक में संधि होना स्वाभाविक था। मोखरी वंश का अंत थानेश्वर राज्य के शत्रुओं ने उसकी विपदा का पूर्ण लाभ उठाया। इस राज्य की पश्चिमी सीमा पर हुड़ मंडरा रहे थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। उसके दोनों राजकुमार अनुभवहीन युवक थे। थानेश्वर राज्य का मित्र मोखरी नरेश ग्रहवर्मा भी यवन युवक था। जिस समय थानेश्वर में राज्यवर्धन और हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठने के लिए एक दूसरे को मना रहे थे, उसी समय कान्यकुब्ज के एक दूत संवादक ने उन्हें सूचना दी कि जिस दिन राजा की मृत्यु का दुखद समाचार मिला, उसी दिन दुष्ट मालवराज ने महाराज ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। राजपुत्री राजश्री को पैरों में बेड़ियां डालकर चोर की स्त्री की भांति कान्यकुब्ज के कारागार में डाल दिया गया है। ऐसा सुना जाता है कि वह दुष्ट यहां की सेना को सेना रहित समझ कर इस राज्य पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा है। इस प्रकार मालवराज ने ग्रहवर्मा को मारकर कान्यकुब्ज के मोखरी वंश का अंत कर दिया। मालवराज का समीकरण बाण ने हर्षचरित में कहीं भी मालवराज का नाम नहीं बताया है, अतः उसके इसके समीकरण के प्रश्न पर मतभेद है। पहला, डॉक्टर डीसी गांगुली का मत है कि प्रारंभ में महासेन गुप्त का राज्य था, उस पर कलचुरी नरेश शंकरगण ने आक्रमण किया और महासेन गुप्त को मार डाला। महासेन गुप्त के पुत्रों कुमार गुप्त और मालव गुप्त ने अपने संबंधी प्रभाकर वर्धन के थानेश्वर राज्य में शरण ली। शंकरगढ़ के पश्चात उसका पुत्र बुद्धराज मालवा का राजा हुआ। हर्षचरित में उल्लेखित मालवराज की यही बुद्धराज था। इसी ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, परंतु यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्धन अभिलेखों में कहीं भी परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से बुद्धराज का नाम नहीं आया है। दूसरा, मालवराज देवगुप्त प्रतीत होता है कि इसका नाम मधुबन और बासखेड़ा अभिलेखों में आया है। वहाँ कहा गया है कि राज्यवर्धन ने युद्ध में श्री देवगुप्त आदि राजाओं को वश में किया। मालवराज की पराजय हर्षरित का कथन है कि ग्रहवर्मा की हत्या की सूचना पाते ही राज्यवर्धन ने संन्यास लेने के विचार को छोड़ दिया। वे तत्काल सेना सहित मालवराज को दंडित करने के लिए चल पड़े। उसी ग्रंथ का पुनः कथन है कि राज्यवर्धन ने बड़ी सरलता से मालव सेना को पराजित कर दिया राज्यवर्धन की हत्या, परंतु गौर नरेश उन्हें भुलावे में डालकर तथा विश्वास दिलाकर अपने घर ले गया। वहाँ जब वे अकेले और शस्त्रहीन थे तो गौर नरेश ने उनकी हत्या कर दी। गौड़ाधिपिका समीकरण हर्षचरित में गौर नरेश का भी नाम नहीं मिलता। बाण उसे गौड़ाधीप गौड़ाधम गौड़ाभुजंग आदि नामों से पुकारते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं कि इस पापी का नाम लेने से ही मेरी जीवा पाप से लिप्त हो रही है। अनेक साक्ष्य से प्रकट होता है कि गौर नरेश शशांक था। पहला, वेनसांग का कथन है कि हर्ष के पुरोगामी राजा को कर्ण सुवर्ण के दुष्ट राजा शशांक ने मार डाला था। दूसरा, हर्षरित की टीका करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है कि राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की थी। तीसरा, बाण ने भी अप्रत्यक्ष रूप से शशांक का नाम लिया है। चौथा, व्यूलर महोदय ने हर्षरित की एक प्रति में गौड़ाधीप का नाम नरेंद्र गुप्त पाया है। पांचवा, कुछ मुद्राओं पर नरेंद्र विजित लिखा मिलता है। छठवां, बाण ने अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र का भी नाम लिया है। इन आधारों पर स्पष्ट हो जाता है कि राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़ाधीप शशांक था। संभवतः इसका नाम नरेंद्र गुप्त भी था। डॉक्टर राखल दास बनर्जी का मत है कि शशांक उत्तरकालीन गुप्तवंशी था। संघ, ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि देवगुप्त और शशांक की कार्यवाही एक सम्मिलित योजना के अनुसार हुई थी। वे दोनों एक ही वंश के हों अथवा न हों, उनमें संघ की संभावना प्रतीत होती है। संभवतः इस संघ में देवगुप्त और शशांक के अतिरिक्त कुछ अन्य राजा भी सम्मिलित थे। पासखेड़ा अभिलेख में देवगुप्त आदि राजाओं का उल्लेख है जिन्हें राज्यवर्धन ने संयत किया था। हर्ष के सेनापति सीनाद ने भी हर्ष को यह सम्मति दी थी कि एक शशांक ही क्या, आप तो ऐसा करें जिससे अन्य राजा भी इस प्रकार का आचरण न करे। राज्यवर्धन की हत्या कैसे हुई, इस प्रश्न पर अनेक साक्ष्य प्रकाश डालते हैं। पहला, बाण का कथन है कि जब राज्यवर्धन ने बड़ी सरलता पूर्वक मालव सेना को पराजित कर दिया तो गौड़ाधीप मिथ्याचार द्वारा विश्वास दिलाकर राज्यवर्धन को अपने घर ले गया और जब वे वहां अकेले और निःशस्त्र थे तो उन्हें मार डाला। दूसरा, हर्षरित के ऊपर टीका करते हुए शंकराचार्य ने एक नवीन सूचना यह दी कि शशांक ने दूत भेजकर राज्यवर्धन को यह वचन दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देगा। इस प्रकार विश्वास उत्पन्न कर वह उन्हें अपने घर ले गया और जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने उन्हें धोखे से मार डाला। तीसरा, वेनसांग का कथन है कि हर्ष का पुरोगामी राजा कर्ण सुवर्ण के दुष्ट राजा शशांक द्वारा धोखे से मारा गया। चौथा, शशांक के विश्वासघात की पुष्टि बासखेड़ा अभिलेख से होती है। इसमें कहा गया है कि राज्यवर्धन ने सत्यानुरोध के कारण शत्रु के घर में अपने प्राण खोए, परंतु डॉक्टर मजूमदार इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि शशांक ने विश्वासघात से राज्यवर्धन की हत्या की थी। वे कहते हैं कि बाण और वेनसांग दोनों ही हर्ष के आश्रम में रहते थे, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। रही शंकर की बात तो वह 14वीं शताब्दी में हुआ था, अतः उसका कथन भी असत्य हो सकता है। इसके विपरीत शेयुक्यु की एक प्रति में विश्वासघात की बात नहीं कही गई है, परंतु डॉक्टर मजूमदार की आपत्ति निर्बल है। बाण ने अपने ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख यथावत किया है। वेनसांग ने पुलकेशिन चालुक के द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख किया है, अतः इन दोनों पर मिथ्याचार का दोष लगाना अनुचित है। कालांतर का लेखक होते हुए भी शंकर ने अपने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को सुरक्षित रखा है। सीयुकी का वही कथन है अधिक विश्वसनीय समझा जाना चाहिए, जिसकी पुष्टि अन्य भारतीय साक्ष्यों द्वारा की जाए। श्री आरपी चंद्र का यह कथन नितांत काल्पनिक है कि राज्यवर्धन युद्ध करते हुए अथवा आत्मसमर्पण करने के पश्चात मारा गया था, अतः यही मत अधिक ग्रह प्रतीत होता है कि अपने मित्र देवगुप्त की पराजय से गौर नरेश शशांक घबरा गया। उसने राज्यवर्धन का युद्ध भूमि में सामना न किया वरन छल पूर्वक उसे मार डाला। हर्ष सिंहासनारोहण। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। इसी तिथि से हर्ष संवत प्रारंभ हुआ। कानिकुब्ज। हर्षरित का कथन है कि ग्रह वर्मा की हत्या होने पर उसके सारे संबंधी कानिकुब्ज छोड़कर भाग गए। ग्रह वर्मा के कोई पुत्र न था। नालंदा राजमुद्रा से प्रकट होता है कि ग्रह वर्मा के एक भाई था जिसका नाम श्री शुभ था। इसका क्या हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। वेनसांग का कथन है कि पानी के नेतृत्व में कन्नौज के राजनीतिज्ञों ने हर्ष से प्रार्थना की कि वह कानिकुब्ज के राज्य को स्वीकार करे। हर्ष को संकोच हो रहा था, अतः उसने अवलोकितेश्वर की सलाह ली। अवलोकितेश्वर ने कहा कि वह कानिकुब्ज का शासन भार संभाल ले, परंतु न तो उसके सिंहासन पर बैठे और न महाराज की उपाधि धारण करे। हर्ष ने यह सलाह मान ली और कुमार की उपाधि से कानिकुब्ज का शासन चलाने लगा। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष ने कानिकुब्ज का राज्य अपनी बहन के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया था। से की फेंगचे का भी कथन है कि वह अपनी विधवा बहन की सहायता से कानिकुब्ज का शासन चला रहा था। शशांक। हर्ष को शशांक द्वारा विश्वासघात से राज्यवर्धन की हत्या का समाचार कुंतलक नामक दूत से प्राप्त हुआ। हर्षरित का कथन है कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि कुछ ही दिनों में से पृथ्वी को गौणों से हीन न कर दूं तो प्रज्वलित अग्नि में पतंग की भांति कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। इस प्रतिज्ञा के पश्चात वे अभियान पर निकले। हर्षरथ का कथन है कि जब वे एक शिविर में रुके हुए थे तब उनके पास कामरूप नरेश भास्कर वर्मा का एक दूत अपने स्वामी की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर आया। ऐसा प्रतीत होता है कि भास्कर वर्मा भी अपने पड़ोसी नरेश शशांक से आशंकित था। हर्ष ने भास्कर वर्मा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हर्ष और भास्कर वर्मा की संधि ने शशांक की स्थिति बड़ी संकटपूर्ण कर दी। तत्पश्चात सेनापति भंडी ने आकर हर्ष की सूचना दी कि गुप्त ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है और राजश्री बंधन मुक्त होकर सपरिवार विंध्याचल के वनों में चली गई है। संभवतः ग्रह वर्मा देवगुप्त और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात शशांक ने कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया। हर्षरथ की कुछ प्रतियों में गुप्त के स्थान पर गौण नाम मिलता है। यहाँ गुप्त और गौण से शशांक का ही अर्थ है। हर्ष का ध्यान बांटने के लिए उसने राजश्री को कान्यकुब्ज की कारा से मुक्त कर दिया। हर्ष अपनी बहन की खोज में चल पड़ा और विंध्याचल में प्रज्वलित अग्नि में कूदने के लिए उद्धत उसकी प्राण रक्षा की। बाण ने अपने हर्षरथ में यह नहीं बताया कि हर्ष और शशांक का युद्ध हुआ अथवा नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष और भास्कर वर्मा की संधि से शशांक की स्थिति भयावह हो गई हो और वह दुरस्त कान्यकुब्ज को छोड़कर अपने गौण राज्य में वापस चला गया हो। 619 ईस्वी का गंजाम अभिलेख मिला है जिसमें विदित होता है कि शैलोद्भववंशी माधव वर्मन महाराजा धीराज श्री शशांक के अधीन सामंत के रूप में राज्य कर रहा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति तक शशांक का विनाश नहीं हुआ था। मिदनापुर में दो ताम्रपत्र मिले हैं। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि इनमें एक की तिथि 629 ईस्वी है और उसमें श्री शशांक मही पाती चतुर्जला लघी में खिलाम लेख है। यह महत्वपूर्ण बात है कि इस लेख में शशांक के लिए केवल श्री का प्रयोग किया गया है जबकि 619 ईस्वी के गंजाम ताम्रपत्र में उसे महाराजा धीराज कहा गया है। इस आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि 619 ईस्वी और 629 ईस्वी के बीच शशांक की स्वतंत्रता जाती रही थी। संभवतः वह हर्ष द्वारा पराजित कर दिया गया था। इस अनुमान की पुष्टि दो साक्ष्यों से होती है। पहला आर्य मंजूषी मूल कल्प का कथन है कि हर्ष से प्रारंभ होने वाले नामधारी राजा हर्ष ने दुष्ट सोम नामधारी राजा शशांक को पराजित किया और उसे अपने राज्य से बाहर न निकलने के लिए विवश किया। इस कथन के अंतिम भाग के अर्थ के विषय में मतभेद है। डॉक्टर वशाक मलेच्छाराचार्य अपूजिता पढ़ते हैं और कहते हैं कि मलेच्छा राज्य ने हर्ष का स्वागत नहीं किया और उसे वापस आना पड़ा। डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय आर्य मंजूश्री मूल कल्प के तिब्बती रूपांतर मलेच्छा राज्य प्रपूजिता को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्ष का मलेच्छा राज्य में स्वागत हुआ और वह अपने राज्य वापस आ गया। जो भी हो इस ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष ने शशांक को पराजित किया था। दूसरा शेख की फेंगचे का भी कथन है कि कुमार राज्य के सहयोग से हर्ष ने विधर्मी राजा शशांक एवं उसकी सेना तथा अन्यायियों को नष्ट कर दिया। इस कथन की पुष्टि निधनपुर अभिलेख से भी होती है। इससे प्रकट होता है कि भास्कर वर्मा ने शशांक की राजधानी कर्णसुवर्ण पर अधिकार कर लिया था। संभवतः दोनों मित्रों हर्ष और भास्कर वर्मा ने सम्मिलित रूप से शशांक पर आक्रमण किया था और उसे पराजित कर उसके राज्य को वापस में बांट लिया था। 637 ईस्वी में वेनसांग पूर्वी भारत गया था। उस समय उसने शशांक को निकट भूतकाल का राजा बताया था। इससे सिद्ध होता है कि शशांक 637 ईस्वी तक मर चुका था। हर्ष की दिग्विजय। हर्षरथ का कथन है कि सेनापति शिहनाद ने हर्ष की यह सम्मति दी थी कि वह शशांक के अतिरिक्त अन्य राजाओं का भी दमन करे जिससे कोई भी भविष्य में शशांक की भांति आचरण न करे। हर्ष की दिग्विजय की सूचना शियुकीन से भी मिलती है जिसका उल्लेख है कि जैसा ही शीलादित्य राजा हुए वैसे ही उन्होंने एक बड़ी सेना एकत्र की और अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेना तथा पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए चल पड़े। पूर्व की ओर प्रस्थान करते हुए उन्होंने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वे निरंतर उस समय तक युद्ध करते रहे जब तक कि 6 वर्षों में उन्होंने पंच भारत को अपने अधीन नहीं कर लिया। तत्पश्चात अपने राज्य का विस्तार कर उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई और 30 वर्ष तक बिना शस्त्र उठाए वे 30 वर्ष तक राज्य करते रहे। हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा उसी समय से उसके युद्ध प्रारंभ हो गए थे। वेनसांग के उपयुक्त कथन से प्रकट होता है कि उसके युद्ध 6 वर्ष तक चले और इस प्रकार उसकी हिजर 612 ईस्वी तक समाप्त हो गई होगी, परंतु यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि हर्ष ने कई युद्ध 612 ईस्वी के पश्चात भी किए। पहला चीनी लेखक मा त्वान लिंग का कथन है कि 618 ईस्वी और 627 ईस्वी के बीच भारत में बड़ी अशांति रही। शिलादित्य ने एक बड़ी सेना का संगठन किया और अदम्य वीरता से युद्ध किया। मनुष्यों ने अपने कवच नहीं उतारे और न हाथियों ने अपने शरीर त्राण। उन्होंने भारत के चतुर्दिक राजाओं को दंडित किया, जिससे उन सब ने उत्तरमुखी होकर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। दूसरा हर्ष के जीवनी से ज्ञात होता है कि उन्होंने 643 ईस्वी में कांगोत पर आक्रमण किया था। हर्ष ने अपनी दिग्विजय किस क्रम से की, उसने किन किन राजाओं को परास्त किया, इसका स्पष्ट ब्यौरा हमें नहीं मिलता, परंतु कुछ देशों के साथ हुए युद्धों के विषय में हमें अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान है। बल्बी युद्ध बल्बी पश्चिमी मालवा के अंतर्गत था। जयभट्ट तृतीय के 708 ईस्वी के नौसारी दामपत्र से प्रकट होता है कि हर्षदेव ने बल्बी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था और ध्रुवसेन ने गुर्जर नरेश दद्द द्वितीय प्रशांत राग के राज्य में शरण ली थी। दद्द द्वितीय के दो दानपत्र फेरा अथवा खेड़ा में मिले हैं। इनमें एक की तिथि 629 ईस्वी है और दूसरे की 630 ईस्वी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष बल्बी युद्ध 629 ईस्वी के पूर्व नहीं हो सकता था। इस प्रकार इस समय जिस प्रकार उत्तरी भारत में हर्ष का शक्तिशाली साम्राज्य था, उसी प्रकार दक्षिणी भारत में चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय का इन दोनों की सीमाओं पर लाटों मालवाओं और गुर्जरों के राज्य थे। किलहर्न महोदय का मत था कि संभवतः ये राज्य पुलकेशी के प्रभाव क्षेत्र में थे। अपनी सीमा पर स्थित बल्बी राज्य को हर्ष भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना चाहता था, इसी से उसने बल्बी पर आक्रमण किया। उधर पुलकेशी द्वारा संरक्षित गुर्जर नरेश दद्द ने बल्बी का पक्ष लिया और उसे अपने राज्य में शरण दी। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष ने भी कूटनीति से काम लिया और प्रारंभिक युद्ध के पश्चात बल्बी नरेश से संधि कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह बल्बी नरेश के साथ कर दिया। वेनसांग बल्बी नरेश को हर्ष का दामाद बताता है। पुलकेशी से युद्ध हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिणी में अपनी राज्य विस्तार करना चाहा, अतः दक्षिणी भारत के चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय के साथ उसका युद्ध हुआ। इसके अनेक प्रमाण है। पहला महाराष्ट्र का वर्णन करते हुए शियुकी का कथन है कि इस समय शिलादित्य महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों को जीत लिया और दूरस्थ प्रदेश तक आक्रमण किया। केवल इसी राज्य के निवासियों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसने पंच भारत की सेनाओं को एकत्र किया है और राज्यों के सर्वोत्तम नायकों को बुलाया है और इन निवासियों को दंडित करने और अपने अधीन करने के लिए स्वयं सेना का संचालन किया है, परंतु अभी तक उसने इनकी सेनाओं पर विजय नहीं पाई है। दूसरा वेनसांग के जीवनी का कथन है कि शिलादित्य ने अपनी निपुणता और अपने सेनापतियों के निरंतर सफलता पर अभिमान करते हुए तथा आत्मविश्वास से पूर्ण होकर इस राजा को चुनौती देने के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए प्रस्थान किया। तीसरा 634 ईस्वी के एहाल अभिलेख से प्रकट होता है कि पुलकेशी ने हर्ष को पराजित कर दिया। इस युद्ध की तिथि के विषय में मतभेद है। पहला डॉटफील्ड का मत था कि यह युद्ध 612 ईस्वी में हुआ था। अपने मत के पक्ष में वे दो प्रमाण देते हैं। पहला वेनसांग का कथन है कि उसने 6 वर्ष तक लगातार युद्ध करने के पश्चात पंच भारत पर अधिकार कर लिया। हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासनसीन हुआ था और उसके युद्ध 612 ईस्वी तक समाप्त हो गए होंगे। दूसरा हैदराबाद दानपत्र का कथन है कि युद्धों में अनेक राजाओं को पराजित करने के पश्चात पुलकेशी ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इन पराजित राजाओं में हर्ष को भी समझना चाहिए। दानपत्र की तिथि 534 संवत है, अतः हर्ष इस तिथि तक पराजित हो गया होगा, परंतु इन दोनों तर्कों का खंडन किया जा सकता है। पहला जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हर्ष के समस्त युद्ध 612 ईस्वी तक समाप्त नहीं हुए थे। इस विषय में वेनसांग का कथन भ्रामक है। दूसरा हैदराबाद दानपत्र पराजित शत्रुओं में हर्ष का नाम नहीं लेता। इसमें संभवतः दक्षिणी भारत के छोटे छोटे राजाओं की पराजय का ही संकेत है। हर्ष एक परम शक्तिशाली राजा था। यदि इस लेख के पूर्व वह पराजित हुआ होता तो इस लेख में उसकी पराजय का वर्णन विस्तार पूर्वक एवं गर्व पूर्वक किया जाता। दूसरा डॉटफील्ड की अपेक्षा डॉक्टर अल्टेकर का मत अधिक मान्य प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि हर्ष 630 ईस्वी और 634 ईस्वी के बीच में पराजित हुआ होगा। उनके तर्क इस प्रकार है। पहला बल्बी राज्य हर्ष और पुलकेशी की सीमाओं पर था, अतः कोई भी सेना नायक बल्बी से निपटने बिना आगे बढ़कर दक्षिण पर आक्रमण करता। था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वल्भी का युद्ध 629 ईस्वी के पूर्व नहीं हो सकता था, अतः हर्ष पुलकेशी युद्ध स्थिति के पश्चात ही हुआ होगा। दूसरा, 630 ईस्वी का लोनेरा अभिलेख पुलकेशी की सफलताओं का वर्णन करता है, परंतु वह हर्ष की पराजय का उल्लेख नहीं करता। इससे अनुमान किया जा सकता है कि स्थिति तक हर्ष पुलकेशी युद्ध नहीं हुआ था। तीसरा, 634 ईस्वी का एहोल अभिलेख पुलकेशी की पराजय का उल्लेख करता है, अतः स्पष्ट है कि स्थिति तक हर्ष पराजित हो चुका था। सारांशतः हर्ष पुलकेशी युद्ध 630 ईस्वी और 634 ईस्वी के बीच में हुआ था। कांगोद विजय हर्ष की जीवनी से प्रकट होता है कि हर्ष ने 643 ईस्वी में कांगोद अभियान किया था। एहोल अभिलेख से प्रकट होता है कि पुलकेशी का अधिकार कलिंग और कौशल पर भी था। इससे स्पष्ट होता है कि कांगोद पुलकेशी के साम्राज्य में था और हर्ष ने 643 ईस्वी में इस पर अधिकार करके पुलकेशी से अपनी पूर्व पराजय का प्रतिशोध किया। हर्ष के समकालीन नरेश। विभिन्न साक्ष्यों से हर्ष के समकालीन राज्यों एवं नरेशों के नाम प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ हर्ष के शत्रु थे और कुछ मित्र। इनमें विशेष उल्लेखनीय है गौड़ नरेश, शशांक, कामरूप नरेश, भास्कर वर्मा, बल्बी नरेश, ध्रुवसेन द्विती, गुर्जर नरेश, दद्ध द्विती, चालुक्य नरेश, पुलकेशी द्विती आदि। शशांक हर्ष के समकालीन राज्यों में शशांक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हर्षरित इसे गौड़ाधीप, गौड़ भुजंग आदि नामों से पुकारता है। इनमें स्पष्ट हो जाता है कि यह गौड़ देश का राजा था। वेनसंग काचे चांग को कर्ण स्वर्ण का राजा बताता है, यह उसकी राजधानी थी। उसके वंश के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पहला, डॉक्टर राखल दास बनर्जी, श्री गौरी शंकर चटर्जी आदि विद्वान शशांक को उत्तरकालीन गुप्त वंश का राजा मानते हैं। ब्यूलर ने हर्षरित की एक प्रति में शशांक का नाम नरेंद्र गुप्त पाया है, अतः इस नाम के आधार पर भी इसे उत्तरकालीन गुप्त वंश ही माना जा सकता है। दूसरा, डॉक्टर बशाक का मत है कि शशांक जयनाग का वंशज था। जयनाग को बपघोष अभिलेख में महाराजा धीराज और परम भागवत कहा गया है। यह अभिलेख 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण का है। कुछ मुद्राओं पर भी जय लिखा मिलता है। इसका उल्लेख आर्य मंजुश्री मूलकल्प में भी हुआ है। इस ग्रंथ की तिब्बती प्रति में राजक्रम इस प्रकार बताया गया है, जयनाग केशरी समाज। डॉक्टर बशाक शशांक को जयनाग का वंशज मानते हैं। तीसरा, डॉक्टर मजूमदार के अनुसार यह बंगाल के स्वतंत्र राजवंश का संस्थापक था। रोहतासगढ़ में प्राप्त अभिलेख में श्री महासामंत शशांक देवस्य नाम आता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शशांक अपने प्रारंभिक काल में सामंत था अथवा हर्ष द्वारा पराजित होने के पश्चात उसे यह सामंत पद स्वीकार करना पड़ा। यदि यह माना जाए कि यह अभिलेख शशांक के प्रारंभिक काल का है, तो फिर अभिलेख के प्राप्ति स्थान के आधार पर यह मानना पड़ेगा कि शशांक का उदय मगध में हुआ। मोखरियों ने मगध पर अधिकार कर लिया था, अतः संभव है कि शशांक प्रारंभ में मोखरी वंश के अधीन राज्य करता हो। तत्पश्चात 606 ईस्वी तक शशांक स्वतंत्र हो गया था और उसने बंगाल भी जीत लिया होगा। तभी बाण उसे गौड़ाधीप के नाम से पुकारते हैं। दूबी अभिलेख से प्रकट होता है कि किसी गौड़ नरेश ने कामरूप पर आक्रमण किया था और सुप्रतिष्ठित वर्मा तथा भास्कर वर्मा को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। डॉक्टर सरकार का अनुमान है कि वह गौड़ नरेश शशांक हो सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार शशांक ने उड़ीसा के राजा शंभुई को परास्त कर उसके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था। 300 गुप्त संवत का गंजाम अभिलेख मिला है। इसमें शशांक का महाराजाधिराज कहा गया है और माधव वर्मा को उसका महासामंत बताया गया है। ब्यूलर ने हर्षरित की एक प्रति में शशांक का नाम नरेंद्र गुप्त पाया है। मालाराज देवगुप्त से मिलकर एक प्रतिनिधि की स्थापना की। इसने बड़े महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए। मालवराज देवगुप्त ने कानिकुप्त के विरुद्ध प्रस्थान किया और ग्रह वर्मा को मार डाला, परंतु जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को परास्त कर दिया तो गौड़ नरेश शशांक ने हस्तक्षेप किया, धोखा देकर राज्यवर्धन को मार डाला तथा कानिकुप्त पर भी अधिकार कर लिया। हर्ष को अपने विरुद्ध कार्य वाही के लिए उद्धत देखकर उसने कानिकुप्त छोड़ दिया और अपने राज्य वापस चला गया। हर्षरित से ज्ञात होता है कि कामरूप नरेश भास्कर वर्मा ने हर्ष के साथ संधि कर ली। इस संधि का कारण दोनों के शशांक के प्रति शत्रुता थी। इस संधि से शशांक की स्थिति निर्बल हो गई। हर्ष ने शशांक के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान का क्या परिणाम हुआ, इस विषय पर हर्षरित मौन है, परंतु जैसा कि पहले कहा गया है, शे की फेंगचे और आर्य मंजूषी मूलकल्प के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया था। यह महत्वपूर्ण बात है कि 629 ईस्वी के मिदनापुर अभिलेख में शशांक के लिए एकमात्र श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। संभवतः स्थिति के पूर्व शशांक हर्ष द्वारा पराजित किया जा चुका था। 637 ईस्वी में वेनसंग कर्ण स्वर्ण गया, उसके शशांक को निकट भूत का राजा बनाया गया। गया। इससे प्रकट होता है कि शशांक स्थिति तक मर चुका था। शशांक शैव था। उसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। हिम स्वयं के वर्णन से प्रकट होता है कि शशांक शैव और बौद्ध द्रोही था। सीयूकी का कथन है कि पाटलिपुत्र के स्तूप के एक पाषाण खंड पर महात्मा बुद्ध के पदचिन्ह अंकित है। शशांक ने पहले तो उन पदचिन्ह को मिटाने का प्रयत्न किया। जब वह इस कार्य में सफल न हुआ तो उसने उस पाषाण खंड को गंगा में फेंकवा दिया, परंतु वह पाषाण खंड पुनः अपने स्थान पर आ गया। इसी ग्रंथ से प्रकट होता है कि शशांक ने बौद्धि वृक्ष को कटवाया और उसकी जड़ में आग लगवा दी। उसने बौद्ध गया से महात्मा बुद्ध की मूर्ति हटाकर उसके स्थान पर शिव की मूर्ति स्थापित करने की असफल चेष्टा की। इसमें संदेह नहीं कि शशांक शैव था, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह बौद्ध द्रोही भी था। इस बौद्ध द्रोह की चर्चा एकमात्र बौद्ध साक्ष्य ही करते हैं। संभव है कि यह साक्ष्य दोषपूर्ण हो और उन्होंने शशांक के शैव प्रेम को बौद्ध धर्म द्रोह के रूप में समझा हो। शशांक को गौड़ाधीप कहा गया है। वह निश्चित रूप से उत्तरी और पश्चिमी बंगाल का राजा था। सीयूकी के वर्णन से प्रकट होता है कि उसके राज्य में बिहार भी सम्मिलित था। दुबी ताम्रपत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि उसने कम से कम कुछ समय के लिए असम परई भी अधिकार कर लिया था। मिदनापुर ताम्रपत्रों से अनुमान किया जा सकता है कि उड़ीसा भी उसके राज्य के अंतर्गत था। वेनसांग के वर्णन से प्रकट होता है कि उस राज्य की राजधानी कर्णसुवर्ण थी। भास्कर वर्मा कामरूप में वर्मन वंश का राज्य था। उसकी स्थापना 34वीं शताब्दी में पुष्य वर्मन ने की थी। इसी वंश में उत्पन्न भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था। यह सुसित वर्मा का पुत्र था। पहले कहा जा चुका है कि मगध नरेश महासेन गुप्त ने इसी सुस्थित वर्मा को लोहित तट पर परास्त किया था। भास्कर वर्मा के एक अन्य भाई सुप्रतिष्ठित वर्मा भी था। दुबी ताम्रपत्रों से प्रकट होता है कि शशांक ने इन दोनों भाइयों को पराजित किया था और संभवतः अपने अधीन कर लिया था। भास्कर वर्मा को अपने पड़ोसी राजा शशांक से निरंतर भय था। इसी से उसने 606 ईस्वी में हर्ष से मित्रता कर ली। तेकी फेंगे चे का कथन है कि हर्ष और भास्कर वर्मा दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित किया था। निधनपुर ताम्रपत्रों से प्रकट होता है कि शशांक की राजधानी कर्णसुवर्ण पर भास्कर वर्मा का अधिकार हो गया था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अधिकार शशांक के जीवन काल में हुआ था अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात। डॉक्टर बशाक का मत है कि कर्णसुवर्ण भास्कर वर्मा के अधिकार में न था। वास्तव में वह हर्ष के अधिकार में था। जब हर्ष बंगाल विजय के लिए आया था तो उसके साथ आए हुए उसके मित्र भास्कर वर्मा ने कर्णसुवर्ण में अपना जयस्कंधावार स्थापित किया था। तभी उसने कर्णसुवर्ण से निधनपुर ताम्रपत्र जारी किए थे, परंतु डॉक्टर बसाक के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी राज्य अन्य राजा के राज्य में जाकर अपने दान पत्र जारी नहीं करता। इस स्थिति में कर्णसुवर्ण पर भास्कर वर्मा का ही अधिकार मानना स्वाभाविक प्रतीत होता है। हर्षचरित का कथन है कि भास्कर वर्मा ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष शीश न झुकाने का निश्चय किया था। इससे प्रकट होता है कि वह शैव था, परंतु वेनसांग के विवरण से प्रकट होता है कि वह बौद्धों का भी सम्मान करता था। दुर्वसेन दिति बल्भी पर मैत्रक वंश का राज्य था। इस वंश में खरग्रह प्रथम नामक एक प्रतापी राजा हुआ। उसके दो पुत्रों ने क्रमशः राज्य किया, पहले ध्रुवसेन द्विती और फिर ध्रुवसेन द्विति ने। ध्रुवसेन द्विती हर्ष का समकालीन था। इसने बालादित्य की उपाधि धारण की थी। हिमनसांग इसे ध्रुव भट्ट के नाम से पुकारता है और कहता है कि वह क्षत्रिय जाति का था। उसका स्वभाव उतावला था और उसके विचार संकीर्ण और बौद्ध धर्मावलंबी था। ध्रुवसेन के राज्य में मालवा कच्छ और सौराष्ट्र सम्मिलित थे। उसकी राजधानी बल्भी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह 629 ईस्वी में अवश्य राज्य कर रहा था। स्थिति के पूर्व हर्ष ने उसे पराजित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्पश्चात हर्ष ने उसे मित्रता कर ली, क्योंकि वेनसांग उसे हर्ष का दामाद बताता है। दद्ध द्विति भौनौच में गुर्जर वंश का राज्य था। दो अभिलेख कैरा में और 3 अभिलेख संखेड़ा में प्राप्त हुए हैं। इनसे क्रमशः 3 गुर्जर राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं, सामंत दद्ध प्रथम, जय भट्ट प्रथम वितराग और दद्ध द्विति प्रशांत राग। नौसारी दानपत्र से प्रकट होता है कि हर्ष द्वारा पराजित होने के पश्चात बल्भी नरेश ध्रुवसेन द्विति ने दद्ध द्विति के राज्य में शरण ली थी। इस प्रकार वह दद्ध द्विति हर्ष का समकालीन था। उसके दो कैरा दानपत्रों में उसकी दो तिथियां मिलती हैं, 629 ईस्वी और 634 ईस्वी। सीयूकी से पता चलता है कि वेनसांग कुलीलो गया था। उसने वहां के राजा को क्षत्रिय जाति, नवयुवक, वीर बुद्धिमान और बौद्ध धर्मावलंबी तथा विद्वानों का आश्रयदाता बताया है। पुलकेशी द्विती दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का राज्य था। हर्ष के समय यहाँ पुलकेशी द्विती का राज्य था। वह क्षत्रिय था। उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी और उसके सामंत स्वामी भक्त थे। वेनसांग और उसकी जीवनी का कथन है कि हर्ष और पुलकेशी का युद्ध हुआ था, परंतु हर्ष की सफलता हर्ष को सफलता नहीं मिली थी। पुलकेशी एवं एक शक्तिशाली राजा था। 612 ईस्वी के हैदराबाद ताम्रपत्र में उसकी विजयों का वर्णन है। 634 ईस्वी के ऐहोल अभिलेख में पता चलता है कि पुलकेशी ने कलिंग और कौशल पर भी अधिकार कर लिया था और लाट माला तथा गुर्जर भी उसकी प्रभुत्ता स्वीकार करते थे। मेनसांग के जीवनी से प्रकट होता है कि हर्ष ने 643 ईस्वी में कांगोद विजय की थी। इससे अनुमान किया जा सकता है कि हर्ष ने अपने शासनकाल के अंतिम चरण में पुलकेशी से कलिंग और कौशल छीन लिए थे। हर्ष का साम्राज्य। बाण ने अपने हर्षचरित में हर्ष को सर्व चक्रवर्ती ना घोरी और चतुर समुद्राधिपति कहा है। चालुक्य अभिलेखों से शकलोत्तरा पथनाथ कहते हैं। इन कथनों के आधार पर अनेक विद्वान हर्ष को संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट बताते हैं। पन्निकर का कथन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष ने संपूर्ण उत्तरी भारत अपना अधिकार कर लिया था। ऐतिहासिक का मत है कि उसके युद्ध ने उसे संपूर्ण उत्तरी भारत की प्रभुत्ता प्रदान की। इसी प्रकार डॉक्टर राधा कुमुद का कथन है कि इसमें संदेह नहीं, हर्ष ने संपूर्ण उत्तरी भारत के प्रभुसत्ताधारी सम्राट का गौरवमय पद प्राप्त किया था। परंतु ये कथन न्याय संगत नहीं है। सारे साक्ष्यों की समीक्षा करने के पश्चात यही सिद्ध होता है कि उसके साम्राज्य में उत्तरी भारत के समस्त प्रदेश न थे। हम प्रदेश कर्म से इस समस्या पर विचार करेंगे। थानेश्वर। हर्षचरित से स्पष्ट हो जाता है कि थानेश्वर का राज हर्ष ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन से पाया था। कनंगम के अनुसार इसके अंतर्गत भूतपूर्व दक्षिणी पंजाब, वर्तमान पूर्वी राजस्थान सम्मिलित थे। वर्तमान हरियाणा में करनाल जिले का अभिलेखों में हर्ष संवत प्रयोग मिलता है, इसके पश्चिम में नहीं। अतः हर्ष के साम्राज्य में हरियाणा प्रदेश सम्मिलित था। जालंधर। मेनसांग ने जालंधर का वर्णन करते हुए लिखा है कि जालंधर का राजा बौद्ध था और मध्य भारत के राजा ने उसे अपने देश में बौद्ध धर्म का संरक्षक बनाया था। कुछ विद्वानों ने मध्य भारत के राजा का समीकरण हर्ष के साथ किया है और जालंधर नरेश को उसके अधीन माना है, परंतु यह निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होता। यदि मेनसांग का तात्पर्य हर्ष से होता है तो वह उसे मध्य भारत का राजा न कहता। इसके अतिरिक्त मेनसांग की जीवनी जालंधर नरेश को उत्तरी भारत का राजा बताती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा था। सतर्दु और सुधन। मेनसांग ने दोनों स्थानों की राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया है। इससे अनुमान होता है कि ये स्वतंत्र राज्य नहीं थे, संभवतः ये हर्ष के अधीन थे। सतर्दु की भौगोलिक स्थिति के विषय में हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, परंतु यह सतलज नदी के पूर्व में था। सुधन वर्तमान हरियाणा का सुग था। कश्मीर। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी आदि कुछ विद्वानों का मत है कि कश्मीर हर्ष के अधीन था। इस मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, हेमसांग के जीवनी से प्रकट होता है कि कश्मीर नरेश के पास महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष थे। हर्ष ने इसके दर्शन की इच्छा प्रकट की। कश्मीर का बौद्ध संघ हर्ष को इस कार्य के लिए अनुमति नहीं देना चाहता था। उसने उस दंत अवशेष को कहीं छिपा कर रख दिया, परंतु कश्मीर नरेश ने हस्तक्षेप कर हर्ष को दांत के दर्शन करा दिए। दर्शन करते समय हर्ष इतना अधिक भावुक हो उठा कि वह बलपूर्वक उस दांत को अपने साथ ले गया। इस घटना से डॉक्टर मुखर्जी ने निष्कर्ष निकाला कि कश्मीर नरेश हर्ष के अधीन था। दूसरा, राजा तरंगिनी का कथन है कि कश्मीर कुछ काल तक हर्ष आदि राजाओं के अधीन रहा। तीसरा, हर्षचरित में एक स्थान पर कथन है कि अत्र परमेश्वरेण तुषार शैल भवो दुर्गाया गृहीता करा। इस कथन से कुछ विद्वान यह अर्थ लगाते हैं कि दुर्गम पार्वती प्रदेश कश्मीर से कर लिया था, अतः वह उसके अधीन रहा होगा, परंतु यह तर्क त्रुटिपूर्ण है। पहला, जीवनी के साक्ष्य से कश्मीर पर हर्ष का आधिपत्य सिद्ध नहीं होता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि हर्ष की अपेक्षा निर्बल होने के कारण कश्मीर नरेश ने दांत की घटना पर हर्ष से युद्ध नहीं किया और शांत होकर बैठ गया। दूसरा, राजतरंगिनी में उल्लेखित हर्ष कानिकुब्ज के हर्ष से भिन्न व्यक्ति प्रतीत होता है। कश्मीर नरेश हर्ष के एक पुत्र था, जबकि कानिकुब्ज नरेश हर्ष में कोई पुत्र न था। तीसरा, हर्षचरित में निम्नलिखित पार्वती प्रदेश कश्मीर के अतिरिक्त कोई अन्य प्रदेश भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त उस पंक्ति का यह भी आश्रय हो सकता है कि हर्ष ने किसी पार्वती प्रदेश की राजकुमारी से विवाह किया था। इन तथ्यों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कश्मीर हर्ष के साम्राज्य से बाहर था। सिंध। ऐतिहासिक आदि विद्वानों ने सिंध को हर्ष के अधीन माना है। इस मत के पक्ष में हर्षचरित का एक वाक्य उद्धृत किया जाता है, अत्र पुरुषोत्तमेन सिंधु राजयम प्रमथ्यम लक्ष्मीरात्मी कृता। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि हर्ष ने सिंधु राज को पराजित कर उसकी संपत्ति छीन ली, परंतु यह वाक्य काव्यात्मक है और उसको अक्षरशः सत्य नहीं मानना चाहिए। वेनसांग ने सिंधु का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य की भांति किया है। वह कहता है कि उस समय वहाँ एक शूद्र जाति राजा का शासन था और वह बौद्ध तो धर्मावलंबी था। उत्तर प्रदेश अन्य साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश हर्ष के अधीन था। वेनसांग ने यहाँ स्थित अनेक नगरों के राजाओं के नाम नहीं दिए हैं। इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि यह नगर हर्ष के अधीन थे। इनमें से कुछ निम्नलिखित थे: मथुरा, गोविशान, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों बांसखेड़ा, मधुबन में हर्ष के अभिलेख मिले हैं। इनमें भी उसका उत्तर प्रदेश पर अधिकार सिद्ध होता है। पहले कहा जा चुका है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश मोखरी वंश के अधीन था। अंतिम मोखरी नरेश ग्रह वर्मा की मृत्यु के पश्चात कानेकुब्ज राज्य हर्ष के अधिकार में आ गया था। नेपाल। भगवान लाल इंद्रजी व्यूलर, स्मिथफील्ड आदि विद्वानों का मत है कि नेपाल पर हर्ष का अधिकार था। इस मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, हर्षचरित का उल्लेख है कि अत्र परमेश्वरेण तुषार शैल भूवो दुर्गाया गृहीतः करः। यहाँ कुछ विद्वान पार्वती प्रदेश का तात्पर्य नेपाल समझते हैं। दूसरा, नेपाली वंशावलियों का कथन है कि विक्रमादित्य नेपाल गया था और उसने वहाँ अपना संवत चलाया था। कुछ विद्वानों ने विक्रमादित्य का समीकरण हर्ष से किया है। तीसरा, नेपाल में अनेक अभिलेख मिले हैं जिनमें तिथियां दी गई हैं। इनमें एक राजा अंशु वर्मा का पता लगता है। इंद्रजी व्यूलर और फिल्ट का मत है कि इस राजा ने अपने अभिलेखों में हर्ष संवत का प्रयोग किया है, अतः वह हर्ष के अधीन होगा। परंतु ये तर्क न्याय संगत नहीं है। पहला, हर्षचरित का कथन बड़ा संदेहपूर्ण है। उसमें एकमात्र एक पार्वती प्रदेश का उल्लेख है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि वह नेपाली हो। पुनः जैसा कि पहले कश्मीर के संदर्भ में कहा जा चुका है, हर्षचरित के इस वाक्य से हर्ष का किसी पार्वती राजकुमारी के साथ विवाह का भी आश्रय लगाया जा सकता है। दूसरा, भगवान लाल इंद्रजी ने सिद्ध किया है कि नेपाली वंशावलियों का ऐतिहासिक महत्व कम है। इनमें निम्न उल्लिखित बहुसंख्यक राजा एकमात्र प्रामाणिक हैं। उनके लंबे लंबे शासन कालों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पुनः हर्ष की उपाधि शीलादित्य थी, विक्रमादित्य नहीं। तीसरा, नेपाल के अभिलेखों में जो तिथियां दी गई हैं, वे किस संवत की हैं, यह स्पष्ट नहीं होता। उपयुक्त विद्वानों ने अंशु वर्मा की कुछ तिथियों को हर्ष संवत ही माना है, परंतु यह संभव नहीं है। वेनसांग जब उत्तरी भारत में आया तब वह अंशु वर्मा मर चुका था। अंशु वर्मा के अभिलेखों में उसकी अंतिम तिथि 45 है। यदि यह हर्ष संवत की तिथि मानी जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि अंशु वर्मा 651 ईस्वी में जीवित था, परंतु वेनसांग तिथि के पूर्व ही भारत से वापस जा चुका था और उसी की सूचना के अनुसार अंशु वर्मा तिथि के पूर्व ही मर चुका था। लेवी का मत है कि नेपाल नरेश हर्ष के अधीन नहीं वरन तिब्बती नरेश शांग शोंग गांपो के अधीन था। मगध। मातवान लीन का कथन है कि शीलादित्य ने मगधराज की उपाधि धारण की थी। वेनसांग ने रामग्राम, चंपा और वैशाली के राजाओं का उल्लेख नहीं किया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि ये हर्ष के अधीन थे। कामरूप। निहार रंजन राय और राधा कुमार मुखर्जी ने कामरूप को हर्ष के साम्राज्य में माना है। इस मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, कामरूप नरेश भास्कर वर्मा हर्ष की कानिकुब्ज सभा और प्रयाग के दानोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आया था। संभवतः वह हर्ष के अधीन था। दूसरा, हर्षचरित में कहा गया है कि हर्ष ने कुमार का अभिषेक किया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि कुमार हर्ष के अधीन था। तीसरा, सीयू की ने कामरूप नरेश का वर्णन इस प्रकार किया है, तत्कालीन राजा ब्राह्मण था, वह नारायण देव का वंशज था। उसका एक नाम भास्कर वर्मा, दूसरा नाम कुमार था। डॉक्टर निहार रंजन राय का मत है कि कुमार नाम से प्रकट होता है कि वह हर्ष के अधीन सामंत था। चौथा, जीवनी का कथन है कि वेनसांग कामरूप नरेश की राज्यसभा में था। हर्ष ने उसे अपनी सभा में बुलवाना चाहा। भास्कर वर्मा ने कहला भेजा कि हर्ष मेरा शीश ले सकते हैं, परंतु मैं वेनसांग को नहीं भेज सकता। इस उत्तर से हर्ष क्रुद्ध हो गया और उसने भास्कर वर्मा के पास सूचना भेजी कि अपना शीश भेज दो। भास्कर वर्मा इस सूचना को पाकर भयभीत हो गया और वह तत्काल वेनसांग को अपने साथ लिए हर्ष से मिलने पहुंचा। इस घटना के आधार पर कुछ विद्वान भास्कर वर्मा को हर्ष के अधीन मानते हैं। पांचवा, भास्कर वर्मा ने अपना दूत भेजकर स्वयं हर्ष से मित्रता करने का प्रस्ताव किया था। हर्ष ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तभी से भास्कर वर्मा हर्ष का अधीनस्थ मित्र था। परंतु ये सभी तर्क बड़े भ्रमपूर्ण हैं। पहला, हर्ष की सभाओं में सम्मिलित होने के लिए उसके सामंतों के साथ साथ मित्र भी आए थे। दूसरा, हर्षचरित का कथन अस्पष्ट है, उससे बाष्पवर्मा की अधीनता सिद्ध नहीं होती। तीसरा, कुमार नाम से सामंत पद सिद्ध नहीं होता। यदि ऐसा हो तो फिर गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का भी सामंत शासक मानना पड़ेगा। चौथा, जीवनी में उल्लिखित घटना से अधिक से अधिक यही सिद्ध होता है कि छोटी सी बात को लेकर भास्करवर्मा हर्ष की शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। पांचवा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शशांक की भास्करवर्मा और हर्ष दोनों का शत्रु था। उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध उनकी परस्पर शत्रुता किसी की अधीनता सूचित नहीं करती, अतः कामरूप को स्वतंत्र राज्य मानना ही उपयुक्त है। बंगाल के ऊपर शशांक का अधिकार था। वेनसांग 637 ईस्वी में पूर्वी भारत आया था। उस समय तक शशांक मर चुका था। डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि शशांक की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण बंगाल हर्ष के अधिकार में आ गया। शेख की फेंगचे से प्रकट होता है कि हर्ष और भास्कर वर्मा ने सम्मिलित रूप से शशांक को परास्त किया था। निधानपुर अमरपत्र से प्रकट होता है कि कर्ण सुवर्ण पर भास्कर वर्मा का अधिकार था। इन तथ्यों के आधार पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्ष और भास्कर वर्मा ने बंगाल को आपस में बांट लिया था। उड़ीसा और कांगोत की राजनीतिक स्थिति के विषय में वेनसांग ने कुछ भी नहीं लिखा है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि ये प्रदेश हर्ष के अधीन थे। जीवनी का कथन है कि हर्ष ने एक बौद्ध विद्वान जयसेन को उड़ीसा में 80 ग्राम दान देने का प्रस्ताव किया था, परंतु जयसेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया था। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि उड़ीसा हर्ष के अधीन था। जीवनी से यह भी प्रकट होता है कि हर्ष ने 643 ईस्वी में कांगोद विजय की थी। बल्भी, कुछ विद्वान बल्भी को भी हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत मानते हैं। उनके तर्क इस प्रकार हैं। पहला, बल्भी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष के कन्नौज की धार्मिक सभा में सम्मिलित हुआ था। दूसरा, वह हर्ष का दामाद था, परंतु इन दोनों में से कोई भी तर्क बल्भी की अधीनता सूचित नहीं करते। दक्षिणी भारत, श्रीकंठ शास्त्री आदि कुछ विद्वानों के मतानुसार दक्षिणी भारत के कुछ भाग पर भी हर्ष का अधिकार था। इस मत के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहला, मयूर का साक्ष्य। मयूर संभवतः बाण के ससुर थे। इनका एक श्लोक प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने स्वामी की कुंतल, चोल, मध्यदेश और कांची की विजय का उल्लेख किया है। दूसरा, सिगोमा जिले में गद्दे मन्ने नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला है। इसमें शिलादित्य के सेनापति पैद्रणी सत्यांक का उल्लेख है। सत्यांक महेंद्र की सेना के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। शास्त्री जी का मत है कि शिलादित्य हर्ष थे और महेंद्र पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम थे, परंतु ये दोनों साक्ष्य बड़े विवादग्रस्त हैं। प्रथमतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त श्लोक मयूर का ही है। द्वितीय, डॉक्टर मजूमदार के मतानुसार गद्दे मने अभिलेख का शिलादित्य चालुक्य युवराज शाश्रय शिलादित्य था और महेंद्र वर्मा पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा द्वितीय था। अतः इस साक्ष्य से चालुक्य पल्लव संघर्ष सिद्ध होता है, हर्ष का दक्षिणी भारत में अभियान नहीं। उपयुक्त विवेचन के पश्चात यही निष्कर्ष निकलता है कि हर्ष के साम्राज्य में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रदेश सम्मिलित थे। वेनसांग ने संभवतः इन्हीं को पंच भारत के नाम से पुकारा है। चीन के साथ संबंध, इस विषय में मातवान लीन का वर्णन महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि शिलादित्य ने मगधराज की उपाधि धारण की और एक पत्र के साथ अपना एक दूत सम्राट के पास भेजा। बदले में सम्राट ने लियंग होई किंग नामक अपना दूत इस आशय के आमंत्रण पत्र के साथ भेजा कि शिलादित्य अधीनता स्वीकार कर ले। मातवान लीन आगे कहता है कि हर्ष ने चीन सम्राट को अपना अधिपति मान लिया, परंतु मातवान लीन के कथन पर अक्षरशः विश्वास नहीं किया जा सकता। इससे अधिक से अधिक यही सिद्ध होता है कि हर्ष और चीन सम्राट ने एक दूसरे की सभा में दूत भेजे थे। 643 ईस्वी में एक अन्य चीनी दूत मंडल भारत आया था। इसका नेता ली ची पाओ था। 647 ईस्वी में वांग हेनसी के नेतृत्व में एक अन्य चीनी दूत मंडल ने भारत के लिए प्रस्थान किया, परंतु उसके भारत पहुँचने के पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष का धर्म, अनेक साक्ष्यों से अनुमान किया जा सकता है कि हर्ष कम से कम अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म के प्रति विशेष आकृष्ट था। पहला, हर्ष ने अपनी राजधानी कानिकुब्ज में एक महासम्मेलन किया था। इसका उद्देश्य अन्य धर्मों के विरुद्ध महायान धर्म की महत्ता स्थापित करना था। इस सम्मेलन में वेनसांग विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उसके अतिरिक्त इससे 18 देशों के राजा बौद्ध धर्म का महायान तथा हीनयान शाखाओं के 3000 भिक्षु, 300 ब्राह्मण और जैन आचार्य और नालंदा विहार के 1000 भिक्षु आए थे। महासम्मेलन के प्रारंभ में जो जुलूस निकाला गया उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे आगे थी। उनके दोनों ओर ब्रह्मा के रूप धारण किए हुए भास्कर वर्मा और शक्र का रूप धारण किए हुए हर्ष अनुचर की भांति चल रहे थे। अधिवेशन में वेनसांग ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मुझे वाद विवाद में पराजित करेगा उसे अपना शीश भी दे दूंगा। परंतु हर्ष ने स्वतंत्र रूप में वाद विवाद नहीं होने दिया। उसने सम्मेलन में घोषणा की कि जो धर्माचार्य को छुएगा या चोट पहुंचाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा और जो कोई उसके विरुद्ध कोई बात कहेगा उसकी जीवा काट ली जाएगी। इसका अर्थ यह था कि सम्मेलन में वेनसांग के मत के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। यह महायान धर्म के प्रति पक्षपात था। हर्ष प्रयाग में पंचवर्षीय सम्मेलन करता था। वहाँ वह प्रथम दिन महात्मा बुद्ध की पूजा करता था और दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की, ब्राह्मणों एवं अन्य धर्मावलंबियों की अपेक्षा बौद्धों को दान का अधिकांश भाग दिया जाता था। तीसरा, उड़ीसा में महायान धर्म का प्रचार करने के लिए हर्ष ने नालंदा महाविहार के 4 प्रचारकों को भेजा था। चौथा, हर्ष ने बलरूप कश्मीर नरेश से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष हस्तगत किए थे। पांचवा, हर्ष ने सैकड़ों स्तूपों का निर्माण किया था, परंतु बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष का विशेषानुराग प्रदर्शित करने वाले सभी साक्ष्य बौद्ध हैं। ये एक पक्षीय एक अतिरंजित हैं। इनके अतिरिक्त अनेक साक्ष्य ऐसे भी हैं जो उसे शैव प्रदर्शित करते हैं। पहला, बांसखेड़ा ताम्रपत्र तथा नालंदा एवं सोनीपत राजमुद्राओं पर हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। दूसरा, हर्ष से प्रकट होता है कि शशांक के विरुद्ध प्रस्थान करने के पूर्व हर्ष ने नील लोहित की पूजा की थी। तीसरा, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने फरुखाबाद में हर्ष की एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की है। उस पर नंदी पर आशीन शिव और पार्वती के चित्र उत्कीर्ण हैं। विद्यानुराग, हर्ष के विद्यानुराग के संबंध में अनेक साक्ष्य मिले हैं। पहला, बाण के अनुसार हर्ष अपनी काव्य कथाओं में अमृत वर्षा करते थे। दूसरा, 11वीं शती के विद्वान शोधल ने अपने ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा में हर्ष को कविंद्र कहा है। तीसरा, 12वीं शती के कवि जयदेव ने अपने प्रसन्न रागों में हर्ष को काव्य का हर्ष कहा है। चौथा, 7वीं शती के चीनी यात्री इस सिंह ने लिखा है कि शीलादित्य साहित्य प्रेमी थे और इन्होंने जिमित वाहन की कथा को पद्य में लिखा था। पांचवा, नागानंद नाटक के अतिरिक्त हर्ष ने प्रियदर्शिका तथा रत्नावली नामक नाटकों की भी रचना की थी। छठवा, हर्ष ने बाण को अपना राजकवि बनाया था। बाण की कृतियां हर्षरित और कादंबरी संस्कृत साहित्य की अमर निधि है। सातवां, मतंग नामक दूसरा कवि भी हर्ष की राज्यसभा में रहता था। इसने सूर्यशतक की रचना की।